नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। रक्षा सहयोग, बागवानी, खेल और कई अन्य क्षेत्रों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, यह विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों तथा आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान बढ़ने के साथ ही ओडिशा के 3 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आज शाम इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप 2025 की शुरुआत। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आज रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी, वानिकी के क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने अधिकृत आर्थिक पारस्परिक मान्यता समझौते का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। इसमें भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने उनके सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन किया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया गया है, जिससे आपसी व्यापार और निवेश की संभावना को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि भारत को इन सभी अवैध तत्वों के खिलाफ न्यूजीलैंड सरकार का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे 2019 का क्राइस्टचर्च आतंकी हमला हो या 2008 का मुंबई हमला, किसी भी रूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत तथा न्यूजीलैंड आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सहयोग करना जारी रखेंगे। अपने बयान में श्री लक्सन ने कहा कि दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाएगा। श्री लक्सन आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इससे पहले आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री लक्सन की यात्रा का उद्देश्य, श्री लक्सन के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हैं। वे बुधवार को मुंबई का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 दिन का ये कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा।
रायसीना डायलॉग के इस संस्करण में करीब 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योग जगत के प्रमुख, शिक्षाविद, सामरिक मामलों के जानकार, नीति निर्माता और युवा शामिल होंगे। इस डायलॉग में 3,500 से अधिक प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे और इसकी कार्यवाही को दुनिया भर के लाखों लोग विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हर वर्ष इस बैठक में विभिन्न देशों के शीर्ष नेता, उच्च स्तरीय अधिकारी, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख और पत्रकार हिस्सा लेते हैं और वैश्विक स्थिति तथा विभिन्न समकालीन मुद्दों पर सहयोग के अवसर तलाशने पर चर्चा करते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस वर्ष के कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु कालचक्र, लोग, शांति और पृथ्वी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी पॉडकास्टर और एआई शोधकर्ता लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट साक्षात्कार को साझा किया है। साक्षात्कार के दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने संबंधों के बारे में विस्तार से बात की और अमेरिका के प्रति उनके लचीलेपन और समर्पण की प्रशंसा की। 3 घंटे तक चले पॉडकास्ट में कई विषयों को शामिल किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ये विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर श्री पाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सदन में 428 पृष्ठों की रिपोर्ट पेश की गई है और वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुस्लिम संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा है ताकि एक निष्पक्ष और संतुलित कानून बनाया जा सके।
किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसको साहब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके उसको रेफर कर दें, जिससे इस पे और एग्जॉस्टिव डिस्कशन डिलिब्रेशन हो सके, सभी देश के स्टेक होल्डर से मिल सके। सरकार की मंशा खुद साफ थी कि पूरे देश के मुस्लिम संगठनों से इनकी बातें सुनी जा सके, एक बेहतर कानून बनाया जाए। और फिर भी आप देख रहे थे विपक्ष के नेता हों जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, तो ये कहीं न कहीं देश में गुमराह करने की कोशिश है।
राज्यसभा में आज विपक्षी दलों ने फर्जी मतदाता पहचान पत्र संख्या जारी करने और अन्य मुद्दों पर चर्चा की अनुमति न देने के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। उपसभापति हरिवंश ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल, आम आदमी पार्टी और अन्य सांसदों ने फर्जी मतदाता पहचान पत्र संख्या जारी करने पर चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए। दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव 5G संचालित तकनीक के विकास में तेजी लाना है। ये पहल छात्रों, स्टार्टअप और पेशेवरों को 100 से अधिक 5G यूज केस लैब्स के फंडिंग और पहुंच में मदद प्रदान करेगा। सरकार ने कहा है कि कंपनी अधिनियम और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता IBC के तहत अब तक 20,000 से अधिक मामले लंबित हैं। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें ई कोर्ट और हाईब्रिड कोर्ट परियोजनाओं का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठी और रिक्तियों को भरना शामिल है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर 27 मार्च को होने वाले उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने एक एक उम्मीदवार की घोषणा की है। शिवसेना ने नंदुरबार जिले के एक प्रमुख पार्टी कार्यकर्ता चंद्रकांत रघुवंशी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनसीपी ने संजय घोड़के को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों के लिए नागपुर के पूर्व मेयर और फडणवीस के करीबी सहयोगी संदीप जोशी, राज्य भाजपा महासचिव संजय केनेकर और पूर्व विधायक दादाराव केचे की उम्मीदवारी की घोषणा की है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 20 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने विधानसभा में घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश में आजीवन वैधता वाले स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। उन्होंने कहा कि 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनके जाति प्रमाण पत्र सीधे उनके विद्यालयों में मिलेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ देवेंद्र प्रधान का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। डॉ प्रधान के परिवार में उनके बेटे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनकी पत्नी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य डॉ प्रधान 1980 में मंडल अध्यक्ष के रूप में भाजपा में शामिल हुए और उड़ीसा के देवगढ़ संसदीय क्षेत्र से लगातार 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री बने। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस प्रवक्ता ने आकाशवाणी को बताया कि इस इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऐसे समय में जब वैश्विक भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, देश समुद्री सहयोग बढ़ा रहे हैं और संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी भूमिका के साथ नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा और नौसेना आयुध सेवा के अधिकारी भारतीय नौसेना का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा और भारतीय नौसेना आयुध सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने फरवरी महीने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन की केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली पर 34वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस वर्ष फरवरी माह में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा लगभग 1,12,000 शिकायतों का निवारण किया गया। इन शिकायतों के निपटान में औसतन 15 दिन का समय लगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, दूरसंचार तथा डाक विभाग को रैंकिंग में समूह ए श्रेणी में शीर्ष पर रखा गया है, जबकि संसदीय कार्य मंत्रालय, आयुष और भूमि संसाधन विभाग समूह बी श्रेणी में शीर्ष पर रहे। लोकसभा में रेल मंत्रालय के अंतर्गत 2025-26 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि ये केंद्रीय बजट एक विफल बजट है। उन्होंने रेलवे में यात्रियों की सुविधाओं और देश में रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ की घटनाओं पर केंद्र की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर भारतीय रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाया। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय ने ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते समय यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने देश में रेल दुर्घटनाओं को लेकर भी सरकार की आलोचना की। भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिकीकरण के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2,65,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की देश में 100 नई अमृत भारत रेलगाड़ियां, 50 नमो भारत रेल और 200 वंदे भारत रेल चलाने की योजना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जन्म दोष और संबंधित मुद्दे विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें एम्स नई दिल्ली में बाल चिकित्सा सर्जरी के प्रोफेसर डॉ प्रबुद्ध गोयल और स्वामी दयानंद अस्पताल नई दिल्ली के बाल चिकित्सा और नवजात विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सुरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से जन्म दोष की पहचान करने और समय पर उसका निदान और इलाज को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। भारतीय पुरुष टीम अपने अभियान की शुरुआत इटली के साथ मुकाबले से करेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। 7 दिन तक चलने वाले इस विश्व कप में 60 से अधिक मुकाबले खेले जाएंगे। टेनिस में रूस की मीरा एंड्रीवा ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 17 वर्षीय एंड्रीवा ने कल फाइनल में बेलारूस की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालिंका को 2-6, 6-4, 6-3 से हराया। उधर पुरुष सिंगल्स में ब्रिटेन के जैक ड्रेपर ने अपना पहला ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर ने नई दिल्ली में बातचीत की। रक्षा, शिक्षा, बागवानी, खेल और अन्य क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा यह विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों तथा आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान बढ़ने के साथ ही ओडिशा के 3 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आज शाम इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप 2025 की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।